भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंद 8 अध्याय 7। अध्याय का शीर्षक है शिवजी द्वारा विषपान और ब्रह्मांड की रक्षा। श्लोक क्रमांक 39।
प्राणै स्वै प्राणिनः पान्ति साधव क्षणभङ्गुरैः बद्धवैरेषु भूतेषु मोहितेष्वात्ममायया प्राणै स्वै प्राणिनः पान्ति साधवक्षणभङ्गुरैः बद्धवैरेषु भूतेषु मोहितेष्वात्ममायया प्राणै स्वै प्राणिनः पान्ति साधवक्षणभङ्गुरैः बद्धवैरेषु भूतेषु मोहितेष्वात्ममायया। प्राणै स्वै प्राणिनः पान्ति
प्राणों से स्वयं ही अपने प्राणिनः अन्य जीवों की पांति रक्षा करते हैं साधवः भक्तगण क्षणभंगुरैः नाशवान बद्धवैरेषु व्यर्थ ही शत्रुता में लगे भूतेषु जीवों में मोहितेषु मोहग्रस्त आत्ममायया भगवान की बहिरंगा शक्ति द्वारा। अनुवाद और तात्पर्य इसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद, भगवान की माया में मोहग्रस्त सामान्य लोग सदैव एक दूसरे के प्रति शत्रुता में लगे रहते हैं, किंतु भक्तगण अपने नश्वर शरीरों को भी संकट में डालकर उनकी रक्षा करने का प्रयास करते हैं। तात्पर्य, यह वैष्णव का लक्षण है, पर दुख दुखी। बद्धात्माओं को दुखी देखकर वैष्णव सदा दुखी रहता है, अन्यथा उन्हें सुखी बनने की शिक्षा देते रहने का उसका कोई अर्थ नहीं होता। भौतिकतावादी जीवन में लोग शत्रुता के कार्यों में अवश्य ही लगे रहते हैं। अतएव ऐसे जीवन की तुलना संसार दावानल से, जंगल की अग्नि से की गई है, जो स्वतः लग जाती है। शिवजी तथा परंपरा पद्धति में उनके अनुयायी सारे लोगों को भौतिक जीवन की इस भयावह स्थिति से बचाने का प्रयास करते हैं। शिवजी के सिद्धांतों का पालन करने वाले भक्तों तथा रुद्र संप्रदाय वालों का यही कर्तव्य है। वैष्णव संप्रदाय चार हैं, जिनमें से रुद्र संप्रदाय भी एक है, क्योंकि शिवजी रुद्र सर्वश्रेष्ठ वैष्णव हैं। वैष्णवानाम यथा शंभुः। निस्संदेह हम देखेंगे कि शिवजी ने मानवता के लाभ हेतु सारा विश्व पी लिया। प्राणे स्वै प्राणिनः पान्ति साधवः क्षणभंगुरैः। बद्धवैरेषु भूतेषु मोहितेषु आत्ममाया। भगवान की माया से मोहग्रस्त सामान्य लोग सदैव एक दूसरे के प्रति शत्रुता में लगे रहते हैं, किंतु भक्तगण अपने नश्वर शरीरों को भी संकट में डालकर उनकी रक्षा करने का प्रयास करते हैं। आज वैष्णव कैलेंडर के अनुसार शिवरात्रि है, एक दिन बाद में आता है साधारण लोगों के कैलेंडर से। तो आज हम शिवजी की महिमा जानने का प्रयास कर रहे हैं। ये शिवजी के ही शब्द हैं। ये प्रसंग आठवां स्कंद में 5-6 अध्यायों में आता है और समुद्र मंथन के प्रसंग में, कि किस तरह दूर्वास मुनि के प्रति इंद्र का अपराध हो जाता है। वो हार लाए रहते हैं, हार देते हैं, और उस हार को, भगवान का दिया हुआ हार को, ऐरावत हाथी के सूंड में डाल देता है और वो उसे नहीं मार, पैर के नीचे कुचल डालता है। तो इस अपराध के कारण सारा ऐश्वर्य इंद्र खो बैठता है। दशम स्कंद भागवत में भी ये संस्तुति होती है यही तत्व की। बार बार काफी जगह में इस इस बातों की संस्तुति हुई है कि किस तरह आयु, यश, श्रेय, शारीरिक सुंदरता और अपना प्रगति सब कुछ नष्ट हो जाता है जब हम अपराध कर बैठते हैं महत लोगों के प्रति। प्रहलाद महाराज के प्रसंग में भी विष्णु देवताओं को भी यही कहते हैं। हिरण्यकशिपु से त्रस्त होकर जब देवता जाते हैं बोलते हैं उसने तपस्या किया है उसका फल मिल रहा है उसे, पर जब जैसे एक बड़ा टैंक पानी का टांकी है उसमें एक छोटा सा लीक हो गया तो धीरे 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 वो चला जा रहा है पानी, पर उसमें एक बड़ा छेद मार दिया तो तुरंत चला जाता। तो इस तरह से जब तपस्या के द्वारा तपोदिव्यम पुत्र का तपस्या का उद्देश्य है सत्वम शुद्धित, अपने अस्तित्व को शुद्ध करना, पर उस तपस्या के बल से कोई भी कुछ भी चीज प्राप्त कर रहा है तो तपस्या से मिलेगा और भगवान आदान प्रदान करते हैं जैसा तपस्या जो इच्छा से तपस्या करोगे मिलेगी। तो कहते हैं कि हिरण्यकश्यपु ने तपस्या की इसीलिए उसको बल मिला है, पर उसका जब भगवान आराधितो यदि हरिस तपसा तथा किम नाराधितो यदि हरिस तपसा तथा किम, हरि की अगर आराधना कर रहे हो तो दूसरे और तपस्या करने की क्या जरूरत है, और हरि की आराधना नहीं कर रहे हो तो फिर तपस्या करने की क्या जरूरत है। नारद मुनि कहते हैं यानी तपस्या का मतलब हरि की आराधना, यही सबसे बड़ी तपस्या है। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम, ये सबसे बड़ी तपस्या है। तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धियत, जिससे हमारा अस्तित्व शुद्ध हो। यस्मात ब्रह्म सौख्यम, जिसके द्वारा ब्रह्म सुख। क्यों ब्रह्म सुख? अनंतम, ये अनंत है। दूसरा जो है वो क्षण भंगुर है, क्षणिक है, वो एक्चुअली जहर है। गीता में भी भगवान कहते हैं वो सुख जो अग्रे यत्तद अग्रे अमृतमिव परिणामे विषमिव, क्या फायदा ऐसा सुख। तो इस तरह से इंद्र अपना सारा राज्य सब खो बैठते हैं और भाग के जाना पड़ता है उनको बलि महाराज के आक्रमण के दौरान। फिर सारे देवतागण जाते हैं और भगवान के पास ब्रह्मा जी को सामने रखते हुए, तो फिर भगवान प्रकट होते हैं और कहते हैं कि अभी जो आसुरिक लोग हैं उनके लिए अनुकूल है ये समय, काल उनको कर रहा है, क्योंकि वो अच्छे तरह से ब्राह्मण का शुक्राचार्य का के अनुसार मार्गदर्शन पे काम कर रहे हैं। अभी उनके साथ थोड़ा संधि करो और अमृत का पान करना पड़ेगा तुम्हें, तो आप समुद्र मंथन करो। वो शक्तिशाली है, हम कुछ शक्तिशाली नहीं है, बोले फिर भी समुद्र मंथन करो, बाद में अमृत मिलेगा, ठीक है। तो फिर उनके साथ संधि करते हैं और फिर समुद्र मंथन होता है। मंदार पर्वत को लेकर समुद्र में ले आते हैं, वो उसमें भी वो मंदार पर्वत उठाते 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 आधे लोग मर ही जाते हैं, अपने प्रयास से नहीं हो पाता है। फिर सब भगवान की आश्रय लेते हैं, तो भगवान आते हैं गरुड़ जी पे और गरुड़ जी के एक पंख के ऊपर ही वो मंदार पर्वत को रखे। ये भगवान की शक्ति है। एक व्यक्ति गरुड़ जी सारे देवतागण और सारे असुरगण जो एक साथ नहीं उठा पाए गरुड़ जी एक पंख के ऊपर उठा लेते हैं। ऑफ कोर्स ये भगवान की इच्छा के अनुसार है, निमित्त मात्र भव सभ्य साची। कभी कभी देखते हैं गरुड़ जी को भी ऐसा कभी थोड़ा, तो हनुमान जी उनका थोड़ा अहंकार जो है कम कर ले, अहंकार हो गया मेरी शक्ति है वो तुरंत ही हो जाता है। तो भगवान किसी के द्वारा कुछ भी करा सकते हैं, निमित्त मात्र अगर हम निमित्त बनने के लिए तैयार हैं तो हमारे द्वारा क्या नहीं करा सकते। अद्भुत कार्य अपने आंखों के सामने हम देख सकते हैं। लोग कहेंगे आप उसके कारण हैं, पर हम समझते हैं कि हम कारण हो ही नहीं सकते, नामुमकिन है ये हमारे द्वारा। तो गरुड़ जी लाते हैं, समुद्र में डालते हैं, फिर भगवान बोलते हैं तुम्हारा काम हो गया, अभी जाओ यहां से, क्योंकि वासुकी को बुलाना है। जब तक तुम रहोगे तो वासुकी आएगा नहीं, सांप है वो, और तुम गरुड़। तो फिर उनको भेजने के बाद वासुकी को बुलाते हैं, और एक जगह असुर और एक जगह सुर। तो देवतागण मुंह को लेते हैं उस वासुकी की और बोले तुम लोग पूंछ रखो। तो ये आसुरिक साइकोलॉजी है, बोले आ तुम लोगों को मुंह और हमको पूंछ, नहीं हमको वो चाहिए। बगल घर का हमेशा अच्छा दिखता है, बगल घर का जो भी घास जो है ना वो ज्यादा हरा लगता है, भूस संतुष्टि नहीं, जो मिला उसमें संतुष्टि नहीं हमेशा, ये पर हमारी परिस्थिति है। तो ये आसुरिक प्रवृत्ति, उसको क्यों, मेरे को क्यों नहीं, तो वो मेरे को चाहिए और उसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार, मारने के लिए तैयार हूं उसको, कुछ भी किसी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाते हो। ये आसुरिक प्रवृत्ति है, सबके अंदर है, ये भौतिक संसार में आए हैं सबके अंदर है ये। जस्ट क्योंकि हम भक्त बन गए, तिलक लगा लिए, ऐसा नहीं कि चला जाएगा, अभी भी है हमारे अंदर भी। छोटे से रावण है, छोटे से हिरण्यकशिपु है, और ये जो समुद्र मंथन है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग है जहां सीखने को मिलते हैं। दैवासुर जो युद्ध है ये हमारे हृदय में भी चलता है, आसुरिक प्रवृत्ति भी है दैवी प्रवृत्ति भी है। राधानाथ महाराज एक बार प्रवचन दे रहे थे, बोले देयर इज ए गुड डॉग एंड ए बैड डॉग, दो प्रकार के कुत्ते हमारे अंदर बैठे। यहां कुत्ता बोलने से अच्छा नहीं लगता, पर पाश्चात्य देश में कुत्ता बोलने तो बहुत अच्छा है, कुत्ते को ज्यादा मानते। तो गुड डॉग एंड ए बैड डॉग, एक अच्छा, सोलहवें अध्याय में भी भगवान कहते हैं कि दैव आसुर संपत्ति विभाग योगो नाम षोडशोध्याय, दोनों एक दैवी संपत्ति और आसुरिक संपत्ति दोनों हमारे अंदर है। और किस चीज को हम लोग खिलाते हैं, कौन से कुत्ते को खिलाते हैं, किसको भूखा रखते हैं, हर बार हमारे अंदर ये हाँ बहुत सुंदर है, बद्ध वैरेशु भूतेशु, भगवान की माया से मोहग्रस्त सामान्य लोग सदैव एक दूसरे के प्रति शत्रुता में लगे रहते हैं। ये मूल शत्रुता कहां से आई, भगवान से ईर्ष्या, मूल शत्रुता वहां से आती है, भगवान से ईर्ष्या, और भगवान से ईर्ष्या करने के कारण भगवान यद्यद् विभूतिमत् सत्वम् श्रीमत् ऊर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वम् मम तेजोंश संभवम्। किसी को भी अगर कुछ दिया है उसके उसके कर्म के अनुसार किसी को कुछ दिया है, और अगर हम उससे ईर्ष्या करते हैं और उसको खींचने का प्रयास कर रहे हैं, इसका मतलब हम एक्चुअली हम ये कह रहे हैं कि प्रभु आप मूर्ख हो, आपको मालूम नहीं, आपने गलत किया, यहां देना था आप भूल गए लगता है, कैलकुलेशन आपका गलत हो गया, फाइल इधर उधर चला गया लगता है, मेरा नाम देना चाहिए था। बार 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 हम देखते हैं यही प्रसंग बार बार आता है। अब तुकाराम महाराज में देखो साड़ो माड़ो क्या क्या हालत था उसका,
कितना ईर्ष्या, अरे क्या कर रहे हैं, अपना वो भक्ति कर रहे, नहीं खींचो उसको, इसको ले आओ, उसको ले आओ, उसको ले आओ, खत्म करो उसको। हरिदास ठाकुर चुपचाप अपना हरिदास हरिनाम ले रहे हैं, रामचंद्र कांत सहन नहीं हुआ, उसको इतना यश क्यों मिल रहा है, उसका इतना नाम क्या, खींचो उसको, वेश्या को भेजो, इसको भेजो, उसको भेजो। ये प्रवृत्ति जो है यह आसुरिक प्रवृत्ति है हमारे अंदर, सहन नहीं कर पाना। तो स्वाभाविक रूप से ए तुम्हें मेरे को मुंह चाहिए, ठीक है बाबा मुंह लो, मुंह चाहिए, दोनों मंथन तो करना है ना, उधर पकड़ा इधर पकड़ा, ठीक है मुंह लो, मुंह लेके शुरू किया उन लोगों ने। और जैसा मंथन हुआ, वसुकी के पेट का भी मंथन हो गया उधर, क्योंकि घुमा रहे ऐसा रस्सी जैसे, तो उसके मुख से, हजारों मुख से इतना विष निकलने लगा, सारे धुआं निकलने लगा, काला काला धुआं। असुरों को समझा रहे थे गलत किया हमने, पूछी अच्छा था, पर अभी इज्जत का सवाल हो गया, अभी ले लिए फिर से वापस देना ठीक नहीं, बोले ठीक है सहन करो करते रहो। कर रहे बोलो, मंदार पर्वत ही हिलने लगा, कभी ऐसा लुढ़कता था, कभी ऐसा लुढ़कता था। चिल्लों को मथने का आदत नहीं है, ऐसा करते तो वो इधर चला जाता, ऐसा करते तो चला जाता, हमारा मंथन हो जाता है, वो दही का नहीं होता उधर, तो ऐसा बार 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 लुढ़कते रहता है। तो उसको बोलते क्या करे, फिर से भगवान के पास, देवताओं को एक ही मालूम है, दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, बस अभी संभाल लो। फिर से जाते हैं, बोलते भगवान, बोलते ठीक है, भगवान अजित जो है कूर्म रूप धारण करके आते हैं और पीछे से नीचे से पकड़ के रखते, इसीलिए कूर्म देव का जो पूजा है स्थिरता लाता है हमारे जीवन में। भक्ति विनोद ठाकुर ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को सबसे पहले कूर्म देव का एक छोटा सा विग्रह दिया था, और हम लोग जब कूर्म स्थान में गए थे तो प्रवचन में हम लोगों ने सुना कि किस तरह कूर्म देव जो है स्थिरता देते हैं। कूर्म देव की स्मरण करना भी हमारे भक्ति में स्थिरता लाने के लिए अनुकूल है। कुरुदेव आए और मंदर पर्वत को पकड़े, फिर भी ऊपर से हिल रहा था, नीचे से हो गया पर ऊपर से, फिर भगवान अजित हजारों हाथों के रूप में ऐसे जाके पकड़े ऊपर से, फिर ऊपर से नीचे से पकड़ के रखा, फिर वो घूमने लगा सही तरह से, मंथन शुरू हुआ। और मंथन शुरू बहुत सारे सामग्री सब डाले थे, जाम्बवान कहता है कि मेरा काम था ये, समुद्र मंथन जब हुआ था तो मैंने सारे जो अलग अलग प्रकार के क्या कहते हैं उसको हिंदी में, जड़ी बूटियां ये सब, वो सब ला के मैंने डाला था। तो फिर रामायण में वो प्रसंग आता है, हनुमान जी को बोलते हैं, अरे एक समय में मैं 21 बार घूमा था पूरा पृथ्वी का, और ये समुद्र मंथन में डाला था। तो डालते हैं, फिर उसके बाद मंथन शुरू होता है, मंथन होने के बाद सबसे पहला जो है वो हालाहल विष बाहर आता है, और वो इतना विषैला होता है कोई एक व्यक्ति निगल नहीं सकता उसको, बहुत मुश्किल। और तब भगवान खुद कहते हैं कि शिवजी के पास जाओ आप, शिवजी जो है उसको पान करने की क्षमता उनके अंदर है। तो क्या भगवान नहीं कर सकते थे खुद? भगवान सभी तरह से मदद किया, इधर नीचे से कूर्म रूप, ऊपर से अजित रूप, तीन गुणों में आके मंथन किया, उसके बाद अमृत आने के बाद अमृत धनवंतरी के रूप में अमृत लाए, मोहिनी के रूप में छीन के वापस दिया, और एक एक्स्ट्रा रूप पीने के लिए भी एक रूप धारण करना था, क्यों नहीं किए फिर? तो मध्वाचार्य उसके लिए लिखते हैं कि नहीं, भगवान यशोलभस्व दूसरे भक्तों को भी अपना यश देना चाहते, वो अकेले सब कुछ कर सकते, देवताओं की कोई जरूरत नहीं फिर, पर सबको सेवा देना चाहते, सबको यश देना चाहते, उनका यश तो है ऑलरेडी, पर दूसरों को यश देने में आनंद लेते। तो बोलते जाओ शिव जी के पास, और वहां जाके सुंदर प्रार्थना है इस प्रसंग में, देवतागण प्रैक्टिकली ऐसा प्रार्थना करते हैं कि आप ही सर्वस्व हो। अगर आप देखेंगे नहीं कौन किसको प्रार्थना कर रहा है और प्रार्थना पढ़ेंगे, ऐसा लग रहा है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को ही प्रार्थना किया जा रहा है। और उसके तात्पर्य प्रभुपाद लिखते हैं, वो तत्व भगवत तत्व उनके द्वारा उस समय प्रकट हो रहा था। क्यों? क्योंकि बाहर में देखते, बाद में मोहिनी के रूप में जब आते हैं भगवान तो मोहित हो जाते हैं भगवान शंकर, पर उसमें भी किस तरह से उनकी प्रतिक्रिया है वो बड़ा सुंदर है। तो यहां कर रहे हैं और तब शिव जी आते हैं और सारे हालाहल विश्व को कॉन्सेंट्रेट अर्क हां जैसा वो रसना कॉन्सेंट्रेट होता है, तो बहुत सारे कॉन्सेंट्रेट होते बना उबाल उबाल के एकदम इतना, और एक लीटर पानी में डालो तो फुश करके फैल जाता है एकदम उल्टा, उसको उसमें से सार निकाल के एकदम, और एक हथेली पे पूरे समुद्र में भरा हुआ विष, जो देवतागण भी अगर सिर्फ सांस लिए तो मर जाने वाले, उस विष का सांस लिए तो मर जाने वाले, ऐसे विष को उन्होंने पूर्ण रूप से धारण किया अपने हथेली में और पी लिए। पहले परमिशन मांगे पार्वती जी से, पीऊ क्या बोलो, देवताओं ने माते कुछ कहो हां बोलो, क्योंकि पति आपके चले जाएंगे बाद में पीने के बाद। पर पार्वती जी जानती थी अपने पति का महत्व, उनकी स्थिति क्या है वो जानती थी, उन्होंने कहा कि जरूर जरूर आप ग्रहण कीजिए, भगवान की इच्छा क्या है वो जानती थी, ठीक है। और तब शिव जी ने उसे ग्रहण किया और गले में रखा। नीलकंठ इससे प्रसिद्ध हो गए, नीलकंठ या कालकंठ भी कहते हैं कभी कभी, नीलकंठ। तो ये नीलकंठ जो है ये सुंदर आभूषण है शिव जी का, और ये आभूषण जो है अजीब तरह का आभूषण है, पर ये शिव जी का गुणगान करता है। और शिव जी उस विष को पान करने से पहले चार श्लोक कहते हैं, पीने से पहले कहते हैं, शिव जी ने कहा, हे प्रिय भवानी, जरा देखो तो किस तरह सारे जीव क्षीर सागर के मंथन से उत्पन्न विष के कारण संकट में पड़ गए हैं, जीवन संघर्ष में लगे समस्त जीवों को सुरक्षा प्रदान करना मेरा कर्तव्य है। निश्चय ही स्वामी का कर्तव्य है कि वह पीड़ित अधीनस्थों की रक्षा करे। भगवान की माया से मोहग्रस्त सामान्य लोग सदैव एक दूसरे के प्रति शत्रुता में लगे रहते हैं, किंतु भक्तगण अपने नश्वर शरीरों को भी संकट में डालकर उनकी रक्षा करने का प्रयास करते हैं। हे मेरी भद्र पत्नी भवानी, जब कोई अन्यों के लिए उपकार करता है तो भगवान हरि अत्यधिक प्रसन्न होते हैं, और जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो मैं भी अन्य सारे प्राणियों के साथ अत्यधिक प्रसन्न होता हूं। अतएव मैं यह विष पी रहा हूं क्योंकि मेरे कारण सारे जीव सुखी हो सकेंगे। तो दो चीज, एक सारे जीव सुखी रहे और भगवान प्रसन्न हो जाए, यही दो उद्देश्य होता है वैष्णवों का, वैष्णवानाम यथा शंभु। और यहां शिव जी परम वैष्णव वो दिखा रहे हैं कि हर एक जीव सुखी रहे, यानी सच आनंद सदगति को प्राप्त करे और जिससे भगवान प्रसन्न हो। स्वनुष्ठित से धर्म से संसिद्धिर हरितोषणम, जो भी हम कार्य कर रहे हैं उससे भगवान प्रसन्न होना चाहिए, अगर भगवान प्रसन्न नहीं हो तो फिर क्या फायदा, श्रम एव ही केवलम, केवल श्रम हो गया। और अगर भगवान प्रसन्न हो रहे हैं निश्चित रूप से वो भला है, क्योंकि भगवान कब प्रसन्न होते, भगवान पूरी सृष्टि का निर्माण एक ही हेतु किए, बस एक, क्या था वो, कि सब जीवों का उद्धार हो। सब जीव जो बद्ध जीव हैं, जो मोहग्रस्त होकर सदैव आपस में झगड़ने में लगे हुए, वैरी भाव से। प्रहलाद महाराज भी अपने बालकों को, अपने मित्रों को वही कहते हैं, ये मेरा ये उसका। शारीरिक स्तर पर तुरंत आ गए तो ये शारीरिक स्तर से जब देखा जाए तो एक व्यक्ति शत्रु है, एक व्यक्ति मित्र है। क्यों? जो हमारे इंद्रियों को खुश करता है, जो हमारे मन को खुश करता है, जो हमारे अहंकार को खुश करता है, वो हमारा मित्र है। और जो हमारे इंद्रियों को, मन को या अहंकार को चोट पहुंचाता है, वो मेरा शत्रु है। तो ये शत्रुता, मित्र, शत्रु मतलब मित्र, कोई मित्र है तभी तो शत्रु है। तो ये द्वंद्व जो है मन का सबसे बड़ा भ्रम है। और जब तक हम शारीरिक स्तर पर रहेंगे तब तक ये रहेगी ही, जाएगा नहीं इतना आसानी से। और इस द्वंद्व को निकालना ये महान आचार्यों का कर्तव्य है। बहुत तपस्या लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो जाता नहीं है हमारे हृदय से। उसको निकालने के लिए बहुत तपस्या करना पड़ता है। जैसे कोई बच्चा है, कांच से खेल रहा है, कांच के टुकड़े से खेल रहा है, कांच का टुकड़ा कहीं गिरा हुआ है, बड़ा धार है और उसको मिल गया, वो खेल रहा है। मां को मालूम है कि ये चोट पहुंचाएगा बच्चे को, तो उसको निकालने का प्रयास करती है। नहीं, खींचता रहता, लगता है कि जो भी मेरा ले रहा है वो शत्रु है मेरा, जो भी मेरे को लेने आ रहा है, मैं इसको भोग आनंद ले रहा हूं और इसमें जो भी खींचने आ रहा है वो मेरा शत्रु है वो। पर उनका उद्देश्य है कि निकालो इसको, हाथ से निकालो। तो किसी ना किसी तरह से, और निकालने के बाद भी तुम्हारे कारण ऐसा हो गया, चला गया मेरा कांच का टुकड़ा, कितना अच्छा था। तो ये विष पीना जैसा है। प्रभुपाद जी ने प्रचार किया, करने के बाद CIA एजेंट लोग हैं, ये है वो है। एक तो अच्छा करने गया तपस्या करके, हार्ट अटैक होके वहां गया, और जाने के बाद भी अलग अलग तरीके से अपवाद लगाना, मारने का प्रयास करना, नष्ट करने का प्रयास। पर साधव, वो सुंदर शब्द है, प्राणै स्वै प्राणिनः पान्ति साधव क्षणभंगुरे। साधव, साधु का लक्षण कपिल मुनि बोलते हैं इसमें, तीसरे स्कंद में, तितिक्षव। तितिक्षव मतलब सहनशील। अगर इस दुनिया में बद्ध जीवों को निकालना है तो हमें सहनशील होना ही पड़ेगा, क्योंकि लोग सहन नहीं कर पाते। बहुत अच्छा लगता है, कांच का टुकड़ा पकड़ के रखा है और कोई छीन रहा है उनसे, तो बहुत वो लगता है ये शत्रु है। और इस तरह से निश्चित रूप से सहनशील रखना पड़ेगा, नहीं अच्छी तरह से कुछ आइडिया करना पड़ेगा। बच्चे उधर देख, उधर देख, ये कितना अच्छा, ये ले ले, हीरे का ले ले, तो ताकि अपने आप फेंक दे। अलग अलग तरीके साधव। प्रभुपाद जी ने एक सुंदर उदाहरण दिया, शायद ये उपनिषद में आता है, कि एक आदमी था, वो एक नदी के पास गया तो उसने देखा कि एक बिच्छू जो है पेड़ से नीचे गिर गया है और वो नदी में डूब रहा है, नदी में डूब रहा है वो बिच्छू। तो इसने उठा लिया उसको, बिच्छू को ऐसे उठा लिया, उठाते ही वो बिच्छू ने डस लिया उसको। और बिच्छू का जो डसना है बहुत दर्द होता है, दर्द से ही आधे लोग मर जाते, विष से नहीं मरते, दर्द से ही मर जाते, बहुत दर्द होता है। तो दर्द के मारे उसके हाथ से फिसल के नीचे गिर गया, फिर डूब रहा था, फिर से उसने उठाया, फिर उसने काटा, फिर गिर गया। जब तीसरा बार ऐसा हुआ तो पीछे एक आदमी खड़ा था, बोले तू पागल है क्या, अरे तू मर जाएगा, बड़ा विषैला है वो, काट लेगा तो मर जाएगा, छोड़ दे उसको, मरने दे, बोला नहीं, मैंने इस बिच्छू से एक अच्छा चीज सीखा है, इसने मेरे को एक अच्छा चीज सिखाया। क्या सिखाया? बोले देखो बिच्छू मर रहा है पर अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। उसका स्वभाव क्या है? जो सामने आया पहले मारो, बाद में बातचीत। उसको समझता है उसका स्वभाव है वो, जो भी सामने आया टाक काटने का। बोला मैंने भी सीखा है इससे, मेरे गुरु ने कहा है, जा रहे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, तो मैं कहता रहूंगा, उठाता रहूंगा, मारते रहेगा, फिर क्या करूं? उससे मैंने सीखा। देखो वो मर रहा है पर छोड़ता नहीं अपना स्वभाव। अगर एक बिच्छू अपना मरते हुए भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ता है तो मेरे को सीखना पड़ेगा, मेरे को भी ऐसा करना पड़ेगा। दुनिया कुछ भी कहे, भगवान प्रसन्न होंगे, लोगों को फायदा होगा। वैसे भी ये शरीर जाने ही वाला है। चाणक्य पंडित एक सुंदर श्लोक है, नीति शास्त्र का श्लोक है कि सन्निमित्ते वरम त्यागो विनाशे नियते सति। सत निमित्ते, वैसे भी ये शरीर नष्ट होने वाला है, वैसे भी जाने वाला है, क्यों ना जाने से पहले उसको सबसे श्रेष्ठ कार्य में लगाए, स्वार्थ और परमार्थ दोनों हो जाए। सन्निमित्ते, ये फूल वैसे भी नष्ट होने वाला है, ये फूल वैसे भी पेड़ के ऊपर सूखने वाला है, पर सूखने से पहले अगर वो फूल को लेकर पत्रम पुष्पम फलम दोयम योमे भक्त्या प्रेच्छति, अगर भगवान को लगा दिया तो फूल का उद्धार हो गया, उसके वंशज पेड़ का उद्धार हो गया, उसके 21 पीढ़ी का उद्धार हो गया, और उसको पहनने के बाद हमारा उद्धार हो गया, और लगाने वाले का उद्धार हो गया, क्योंकि भक्ति ऊपर उत्तम अश्ना में भगवान ने स्वीकार किया। तो वैसे भी संसार में क्षणभंगुर ही जानते हैं, ये एक साधन है, ये क्षणभंगुर है, चले जाने वाला है। जब तक है, जब तक शरीर में थोड़ा बहुत शक्ति है, परसों हम लोग इधर गए थे हम्पी, तो एक माता जी बहुत बूढ़ी, ओ हनुमान जी का वो पहाड़ देख के सब लोग ऊपर गए, उनको बोले कुर्सी देके बैठा दिए, बोले नीचे बैठे रहो, हम लोग जाके आपके लिए प्रार्थना करके आएंगे। वो बैठी थी वो, फिर हम लोग सब ऊपर गए कीर्तन कर रहे थे, बाद में वो माता जी आ गई ऊपर, बोले अरे कैसे आए? अब रोज आप लोग सब चले गए तो मैंने बोला अभी जो भी होगा देखा जाएगा, हनुमान जी देखेंगे। वह आ गई, मैं छोड़ के आ गई वो धीरे 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 कैसे। बोले ठीक है, वैसे भी यहां इतना दूर आई हूं तो आ जाऊंगी, उसमें क्या है। तो वो जानते हैं वैसे भी ये नष्ट होने वाला है, कृष्ण की सेवा में अगर जाए तो बहुत अच्छा है ना, उससे श्रेष्ठ क्या हो सकता है। देखिए दो प्रसंग आता है रामायण में, एक मारीच, मारीच जो था रावण ने कहा तू मेरा मदद कर नहीं तो मार डालूंगा तेरे को, मार डालूंगा मैं। मारीच ने बोला ठीक है चलो, वैसे भी तू मारने वाला है, तेरे हाथ से मरने राम के हाथ से मरना अच्छा है। तो इसने बोला कि ठीक है, हिरण बनूंगा और भ्रमण करके भ्रमित करके और मैं ले आऊंगा, और गया और राम के हाथों मारा गया। अब मरते मरते लक्ष्मण भी बोला, लक्ष्मण बोला किस लिए, क्योंकि रावण ने बोला था लक्ष्मण का नाम लेना। मरते वक्त लक्ष्मण जी का नाम प्रभु रामचंद्र के बाणों से मरा, बहुत सुंदर बात है ना। बोले नहीं, रावण की सेवा में मरा, जटायु उल्टा, रावण के हाथ, उसे मालूम था रावण के साथ लड़ूंगा तो मरूंगा ही मैं, बट रावण की सेवा करते हुए मरा, रामचंद्र की सेवा करते हुए शरीर त्यागा। रावण से मारा गया पर प्रभु रामचंद्र वैयक्तिक रूप से उस दिन उसका अंतिम संस्कार करके, जो दशरथ महाराज को नहीं मिला वो सौभाग्य, सबसे पहले प्रभु रामचंद्र ने जटायु का किया और उसी दिन वापस भगवत धाम भेजे। वो आने से पहले एडवांस पार्टी भेज दिए पहले, जटायु सत निमित्ते वरम त्यागो, ये मारी मूर्ख समझ नहीं पाया हो। अगर वो कहता तू मार चलेगा पर मैं नहीं करूंगा ये, तो पूरी वैसे भी हम मरने वाले हैं, क्यों ऐसे रावण की सेवा में मरे, क्यों ना राम की सेवा में मरे। तो एक रूप से वो मारा गया, पर क्या मारा गया, नहीं, अमृत प्राप्त हुई उसको, अमरत्व। तो इस तरह से जो साधु है तितिक्षव, तितिक्षव मतलब सहनशील, क्यों सहनशील होता है, कैसे सहन कर सकता है, ताम तितिक्षस्व भारत, क्यों सहन करता है, क्योंकि तितिक्षव कारुणिका, करुणामयी होता है वो बेचारा, वो उसे नहीं मालूम, वो मूर्ख है, वो अगर कर रहा है तो क्या मैं भी उस स्तर पर आके उसके साथ करूं, नहीं, वो कुछ भी करेगा, बच्चा है, बड़बड़ कुछ भी करता है, असभ्य है, कुछ भी करता है, इसके लिए हम भी करें वापस, नहीं, हमारा कर्तव्य हम करते रहेंगे, वो अपना कर्तव्य करने दो, हम अपना कर्तव्य करते रहेंगे। तमोपयातम प्रतियंतु विप्रा गंगात जय, परीक्षित महाराज ने कहा वो ब्राह्मण को श्राप दे दिया, वो मूर्ख किया, मैं उसको उल्टा श्राप देते बैठू, वो श्राप दिया, वो जो आना आने दो, सुखदेव गोस्वामी आप अपना कार्य करो, कथा सुनाओ और मैं अपना काम करूंगा, श्रवण करते रहूंगा, वैसे भी शरीर जाना है, क्यों ना इस तरह से जाए। तो तितिक्षव कारुणिका, क्यों कारुणिका, क्यों इतना करुणामय होते हैं, सुहृद सर्वदेही नाम, सुहृद सर्वदेही नाम, सब जीवों के प्रति सुहृद, किसी से प्रति द्वेष नहीं, द्वेष यानी अज्ञान, अज्ञान से द्वेष आता है, अंततः द्वेष का मतलब है अज्ञान। तो सुहृद सर्वदेही नाम, सब जीवों के प्रति, 84 लाख योनि में कोई भी जीव क्यों ना हो, सब जीवों के प्रति सुहृद, मतलब उसका यू आर एवर वेल विशर, प्रभुपाद साइन करते थे, एवर वेल विशर, चाहे वो कुछ भी सोचे, पर हम युधिष्ठिर महाराज जैसा, वाई, और इसीलिए, अच्छा क्यों सुहृदम सर्वदेही नाम, क्योंकि वो जानते हैं कि भगवान सुहृदम सर्वभूतानाम, और भगवान के प्रतिनिधि होने के कारण हमको भी वैसे होना, और इसीलिए अजात शत्रु, अजात शत्रु, कोई उनका शत्रु नहीं है, क्योंकि समझते हैं हर एक व्यक्ति अज्ञान के कारण विवश होकर काम कर रहा है, इसे काम क्रोध विवश है, विवश होकर काम कर रहा है, वो कठपुतली बन गया है माया के हाथों में, तो उसको दोष देके कोई फायदा नहीं, वो सिर्फ कठपुतली बन गया है माया के हाथों में, यह समझकर अपना कर्तव्य, नाचाओ नाचाओ, हमको भगवान के हाथों में कठपुतली बनना है सदगुरु के आदेशों के अनुसार, तो कठपुतली बनना ही है, माया के हाथों में या इसके हाथों में, विवश होकर उसके बनेंगे। तो अजात शत्रु, और अजात शत्रु, कोई शत्रु नहीं होने के कारण शांता, शांति कब आएगी, जब आप समझ जाओगे एक चीज, ये कि मैं सबका दास, दास दास अनुदास, जिस दिन हम हृदय से समझ जाएंगे कि हम सबके सेवक हैं और सब हमारे प्रभु हैं, उस दिन मन की शांति होगी। जब तक थोड़े हद तक प्रभुत्व जमाने का प्रयास करेंगे, अशांत रहेंगे, क्योंकि इट लीड टू फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि हम प्रभु नहीं है, हम भोक्ता नहीं है, हम सृष्टिकर्ता नहीं है, स्वामी नहीं है, तो जब तक वो भावना रहेगी शांति नहीं। भोक्ता रम्य तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम ऋच्छति। तो साधव साधु भूषण, यही सबसे बड़ा भूषण है उनका, हमेशा सारे सद्गुणों से संपन्न हो जाते हैं। सद्गुण कैसे आएंगे, क्या अपने एक 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 करके आएंगे और सर के ऊपर लगेंगे ऐसा मुकुट जैसा, नहीं, जिस दिन हम समझ गए कि हम दास 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 अनुदास हैं, अपने आप सारे सद्गुण आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि एक सेवक जो है हमेशा प्रभु की सेवा करने का सोचेगा, और उसके कारण अपने आप सहनशील हो जाएगा, अपने आप सुरदम हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। ये एक चीज है। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूत आत्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। पांचवें अध्याय का सातवां श्लोक, सुंदर श्लोक है ये। योग युक्त जो भगवान की सेवा में लगा हुआ है, विशुद्धात्मा, विशुद्धात्मा मतलब पूर्ण रूप से शुद्ध हो गया है। विजित आत्मा, अपने मन को काबू में किया है। क्यों? जितेंद्रिय, उसकी इंद्रियां कृष्ण की सेवा में लगी हुई है, कृष्णदास। सर्वभूतात्म भूतात्मा, तो हर एक जीव को अपने जैसा देखता है। मैं उस स्थिति में नहीं देखना चाहता। कैसे शुरू करे ये भावना, कैसे शुरू हो हमारे हृदय में? बहुत सरल सी बात है, पुट योर सेल्फ इन अदर्स शूज। अपने आप को दूसरे के जूते में डाल के देखो। चीनी भाषा में एक कहावत है, अगर तुमको दूसरे व्यक्ति को समझना है ना, उसके जूते में एक मील चलो, उसका जूता पहनो और एक मील चलो, तब समझ में आता है। अच्छा, इसलिए लंगड़ रहा था, जूता बहुत कड़क है, और मेरे को लगता था ऐसा क्यों चलता है। बोला कितना बार, बोला ठीक से चलना, अब पता लगा उसका जूता बहुत टाइट है, फिट बैठता नहीं। तो ये जब विश्व जितेंद्रिय सर्वभूत आत्मभूत आत्मा कुर्वन अपि न लिप्यते, और उसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, ही इज नेवर ऑफेंसिव टू एनीवन बिकॉज ही इज अ सर्वेंट, ही इज एवरीवन इज हैप्पी विथ हिम एंड ही इज हैप्पी विथ एवरीवन। सब उस व्यक्ति से खुश हैं और वो सबसे खुश है। क्यों? क्योंकि वो सबका सेवक है। और जब तक दूसरा भाव रहेगा तब तक इस प्रकार से वही। तो इस तरह से हम देखते हैं शिवजी यहां वो प्रस्तुत कर रहे हैं। शिव संप्रदाय है, वो फाउंडर आचार्य है, वो दिखाना चाहिए ना, अपने उदाहरण से दिखा रहे। ब्रह्मा जी हुए, लक्ष्मी जी हुए, कुमार हुए, शिव जी हुए, और उसी संप्रदाय में विष्णु स्वामी संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय जिसको कहते हैं। इसी तरह से हमारे संप्रदाय में भी श्रील प्रभुपाद जी को हम देखेंगे ट्रूली ए सेवक। मैं एक नया पुस्तक आया मुकुंद गोस्वामी का, मिरेकल ऑन द सेकेंड एवेन्यू, जरूर पढ़िएगा आप। ये जो मुकुंद गोस्वामी, श्याम सुंदर, ये लोग सब शुरू के कुछ लोग 26 सेकेंड एवेन्यू में जब प्रभुपाद आए सबसे पहले, उनको मुकुंद गोस्वामी ने लाया ना। वो एक व्यक्ति मार रहा था, ठीक से व्यवहार नहीं कर रहा था प्रभुपाद के साथ, वो लड़का पागल होकर ड्रग्स ले लेता था। तो मुकुंद गोस्वामी पहले व्यक्ति थे, माइकल ग्रांट, जिन्होंने प्रभुपाद को लाके वो दूसरा 26 सेकेंड एवेन्यू का वो दिखाया। खुद वो लोग कमा के थोड़ा पैसा देते थे प्रभुपाद जी को। तो उन लोगों ने जो लिखा है, बोले सिंपली मिरेकल हैपन। हमें नहीं मालूम क्या हो रहा था, वो जो बोल रहे थे हम करते जा रहे थे, और हमारे सामने कुछ अद्भुत, जहां भी जाते थे ऐसा हो रहा था प्रोग्राम्स। क्यों? क्योंकि एक बार श्याम सुंदर प्रभु ने बोला, अरे आप लोग क्यों क्या करते, हम लोगों ने देखो 6 हफ्ते में सब कुछ किया। फिर तुरंत वो बोले प्रभुपाद जी हमारे साथ में थे। तो निमित्त मात्र बन गए ऐसे महान व्यक्ति। एक बार प्रभुपाद जी ने बोला किस तरह का विष पिया प्रभुपाद जी ने, 2 हार्ट अटैक, और वहां जाने के बाद भी गरीबी, पैसा नहीं, और कहां है थर्ड क्लास एरिया जैसा में वहां रहना, सब ये पियक्कड़ लोग इधर उधर घूमते रहते, ड्रग एडिक्ट घूमते रहते, उसमें भी सब चोरी हो गया उनका बीच में, कितना तकलीफ, किस लिए? आराम से रह सकते थे। प्रभुपाद जी को एक बार किसी ने पूछा, हमारे अंदर क्या योग्यता थी कि हम लोग कृष्ण भावना में आ गए? प्रभुपाद बोले तुम्हारे अंदर कोई योग्यता नहीं थी, मैंने तुम्हारी योग्यता बनाया। उन्होंने विष पिया, और विष पी के अमृत निकालने के बाद बांट दिया सबको। तो वो तपस्या जो है हमारे लिए किया, जैसे कभी कभी एक पिताजी घर से भाग के आए और कहीं होटल में काम करके बड़े होके इतना पैसा कमाया, आज 15 होटल खड़ा किया और उसके बच्चे जो हैं उनको क्लीनर का काम नहीं करना पड़ता, डायरेक्टली काउंटर पे बैठते, कैश काउंटर पे मुफ्त में बहुत पैसा मिलता है। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति ने विष पिया उधर पहले शुरुआत में, इतना विष पी के अमृत दे दिया है कि आराम से चलता है, पर उसको बनाए रखना सबसे बड़ा कर्तव्य। तो इस तरह से यहां हम देखते हैं कि शिला श्री शिवजी यहां विष का पान कर रहे हैं और यह हमारा परंपरा है, यह हमारा परंपरा है, ताकि लोग सुखी हो और भगवान प्रसन्न हो। और सचमुच में शुरू शुरू में वो विष लगता है, वो विष नहीं है, वो सबसे बड़ा अमृत है, वो सबसे बड़ा अमृत है। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं वो तपस्या इनकन्वीनियंसेस जो मैं कृष्ण की सेवा में जाता हूं, यही मेरा आभूषण है, यही मेरा सर्वस्व है, ये आनंद है मेरा, सबसे बड़ा आनंद वही है कि मैं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए थोड़ा तकलीफ उठाया। वो तकलीफ तकलीफ नहीं है, जिस तरह मां अपने बच्चे को प्रेम, बच्चा अगर मोटा हट्टा कट्टा है उसको उठाने का बोझा है ना, और मलमूत्र विसर्जन करता है, उसे साफ करना बोझा नहीं है, वो आनंद है। चेतन चरता में वर्णन है, जब बच्चा मल विसर्जन करता है ना तो मां के लिए उसको सुगंध लगता है, वो क्या बोलते हैं अगुरु चंदन सब जैसा लगता है वो। और कैसे, क्यों? क्योंकि उसे बहुत आनंद हो रहा है कि बच्चा अच्छे खा पी के पचन कर रहा है सब कुछ। हाँ, अगर वो बोलेगी अगर एक महीना तक अगर मल विसर्जन नहीं किया तो कितना अच्छा होता, बोलेगी विसर्जन करेगा चलेगा, नहीं करेगा तो समस्या, कर रहा है ना ठीक है स्वादिष्ट है, बहुत मस्ती करता है तो मां चिंता होता है। बट अगर वो बीमार होके लेट जाए 3 दिन तो बोलेगा तू भाग दौड़ कर तू तोड़ फोड़ कर चलेगा, पर चलता फिरता रहेगा तो अच्छा है, इन स्वास्थ्य है अच्छा। तो वो चिंता जो है इट इज अ बर्डन ऑफ लव, प्रेम का बोझा है वो बोझा जो है बहुत आनंद आता है। एक बिजनेसमैन को बहुत अगर बिजनेस मिल गया और करोड़ों रुपया मिल गया, अरे उसको कौन उठा के ले जाएगा, पैसा नहीं मिलता तो कितना से कभी बोलेगा वो बोझा बोझा नहीं है, दोनों हाथ में उठा के 50 किलो ले जाएगा वो नोट का, वो बोझा नहीं है। वही बोला ये इसको और किसी चीज को उठाओ तो बोलेगा बहुत बोझा है, थक जाता है। तो जैसा पैसा बिजनेसमैन के लिए बोझा नहीं है, जैसा बच्चा मां के लिए बोझा नहीं है, वैसे भक्त के लिए ये जो तपस्या तथाकथित तपस्या है, ये सेवा जो है कृष्ण की सेवा, भले विष लगे वो लेने के लिए तैयार है, ये प्रेम का लक्षण है। और वो विष विष नहीं, वो एक्चुअली अमृत बन जाता है, यही प्रेम का एक्चुअली लक्षण है, प्रभुपाद के जीवन में हम देखते हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है और आज के दिन शिवजी से हम प्रार्थना कर सकते हैं कि हमें भी वो भावना कि ये जो तथाकथित तपस्या है इसको हम स्वीकार करें बड़े, और ये एक्चुअली हमारा आभूषण है, ये आभूषण शायद इस संसार के लोगों को आकर्षण नहीं करेगा, भगवान आकर्षित होते हैं ऐसे आभूषण से, जैसे हम तिलक लगाए कौन आकर्षित होगा, क्या लगाया सर के ऊपर, भगवान आकर्षित होते हैं, ये आभूषण है। तो इस तरह से ये जो तपस्या है, ये सेवा है, ये एक्चुअली ये ऐसा आभूषण है वैष्णव के लिए जिसे भगवान आकर्षित होते हैं। तो शिव जी से हम प्रार्थना कर सकते हैं कि वो भावना हमें प्राप्त हो, थोड़ा सा भी एक बूंद भी मिल जाए काफी है। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री शंकर भगवान।